आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार विशाली टेन के साथ। विपक्ष नेता सुजन ली ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण संरक्षण कानूनों में किए जा रहे बड़े सुधार तस्मानिया में हजारों नौकरियों पर संकट ला सकते हैं। शुक्रवार को ग्रीन्स के साथ हुई एक डील के तहत अब फॉरेस्ट्री क्षेत्र, जिसमें देश भर में लाखों लोग कार्यरत हैं, राष्ट्रीय मानकों से छूट नहीं पाएगा। टस्मेनियन क्लाइमेट कलेक्टिव का कहना है कि मूल वन कटाई राज्य का सबसे बड़ा उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र है। इसी बीच लेबर ने नौकरियों और उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए $300 मिलियन का पैकेज भी घोषित किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एसोसिएशन ने सेक्टर की स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की है। हालांकि सुजन ले ने इसे एक गंदी डील का करार दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भर के चाइल्ड केयर सेंटर अब साल में 5 दिनों तक अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए समय से पहले बंद हो सकेंगे। ये कदम हाल ही में सामने आए घोटालों के बाद नियमन को सख्त करने और प्रणाली की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का कहना है कि ये नए प्रशिक्षण को लागू करने का व्यवहारिक तरीका है। नेशनल्स नेता डेविड लिटिल प्राउड ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। हालांकि दोनों पक्ष मानते हैं कि इससे अभिभावकों को असुविधा तो होगी। इस बदलाव के तहत चाइल्ड केयर सेंटर साल में किन्हीं 5 दिनों तक शाम 5 बजे अपने द्वार बंद कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर का कहना है कि यह अनिवार्य प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा ताकि नए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चाइल्ड केयर क्षेत्र में उच्च कर्मियों के पलायन और स्टाफ की कमी की समस्या को दूर करने पर काम कर रही है। दूसरी ओर मेलबर्न की लंबे समय से प्रतीक्षित $15 बिलियन की मेट्रो टनल अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है और 5 नए भूमिगत स्टेशनों पर नियमित सेवाएं चालू रहेंगी। 9 किलोमीटर लंबी ये डबल टनल मौजूदा सिटी लूप के साथ समानांतर चलेगी और यात्री 1 फरवरी तक हर सप्ताहांत नेटवर्क पर मुफ्त में सफर कर सकेंगे। ये परियोजना ब्रम्बी सरकार की 2008 की विक्टोरियन ट्रांसपोर्ट योजना का हिस्सा थी और इसका अंतिम डिजाइन 2016 में तय किया गया था। प्रीमियर जेसिंटा एलन, जो इस परियोजना के हर चरण से जुड़ी रही हैं, ने कहा कि उन्हें इस उपलब्धि पर अत्यधिक गर्व है। वहीं नस्लवाद पर सामने आए नए आंकड़े सुझाते हैं कि अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों और युवाओं के खिलाफ नस्लवादी घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं। 2024-25 कॉल इट आउट वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कॉल इट आउट फर्स्ट नेशंस रेसिज्म रजिस्टर पर दर्ज कुल मामलों में से हर 4 में से 1 से अधिक 19 वर्ष तक की आयु के समूह से जुड़े थे, जो पिछले वर्ष तक की तुलना में 10% अंक की वृद्धि है। रजिस्टर में दर्ज प्रत्यक्ष अनुभव बताते हैं कि कई युवाओं को अपमानजनक और नस्लवादी भाषा, सार्वजनिक सेवाओं द्वारा उपेक्षा भरा व्यवहार और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा है। लगभग 1/3 घटनाएं सोशल मीडिया, ऑनलाइन और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्ज की गई। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट समुदाय को अफगान नागरिकों के वीजा प्रोसेसिंग रोकने का निर्देश दिया है, जिससे अमेरिका की 20 साल की तैनाती के दौरान सहयोग करने वाले अफगानों के लिए विशेष प्रवासन कार्यक्रम प्रभावी रूप से निलंबित हो गया है। रॉयटर्स के अनुसार शुक्रवार को कौंसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अफगान नागरिकों के किसी भी इमिग्रेंट या नॉन इमिग्रेंट वीजा आवेदन को अस्वीकार करें, जिसमें स्पेशल इमिग्रेंट वीजा यानी SIV के आवेदक भी शामिल रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया है कि वे अफगानिस्तान से आने वाले प्रवासियों को सीमित करेंगे। ये कदम उस घटना के बाद उठाया गया जिसमें CIA समर्थित अफगान इकाई के एक पूर्व सदस्य को वॉशिंगटन DC में गोली मारी गई। और अंत में खबरें भारत से। भारत में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से करोड़ों रुपए ठगने वाले एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर 2 साल में 8 से 10 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का आरोप है। ये कॉल सेंटर मदापुर में रिज आईटी सॉल्यूशंस के नाम से आईटी सेवा प्रदाता के रूप में चल रहा था। ये गिरोह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को नकली पॉपअप और ईमेल भेजकर डराता था कि उनके कंप्यूटर हैक हो गए हैं। पीड़ित जब दिए गए नंबर पर कॉल करते तो कॉल सीधे स्कैम ऑपरेटरों तक पहुंचता। इसके बाद आरोपियों ने एनी डेस्क जैसे रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवाकर पीड़ितों के बैंक अकाउंट तक पहुंच बनाई और रकम ट्रांसफर कर ली। पैसा सीधे भारत नहीं आता, पहले इसे ऑस्ट्रेलिया बैंक अकाउंट्स में म्यूल खातों के जरिए और फिर हवाला व क्रिप्टो चैनलों से भारत भेजा जाता। छापेमारी में पुलिस को 45 ऑस्ट्रेलियाई खातों से जुड़े सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी प्रवीण और प्रकाश नाम के बताए जा रहे हैं। मामला दर्ज है और अब भी जांच जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आगे और गिरफ्तारियां संभावित हैं। इसी के साथ 30 नवंबर 2025 के संक्षिप्त समाचार यही समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं। Thank you.